નિયમસાર કારણ કાર્ય નિયમ લેક્ચર નંબર 316 ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વૈછાયાણમ નમો લોએ સૌવસાહુણમ નમિઉણજિણમ વીરમ અનંતવર્ણાનદં સણસહાવમ વોચ્છામી નિયમસારમ કેવલી સુદ કેવલી ભણિદમ. આચાર્ય શ્રી કુનકુન ભગવાન દ્વારા રચિત યહ નિયમસાર નામક ગ્રંથ હૈ ઉસ પર પદ્મ પ્રભ મલધારી દેવને તાત્પર્યવૃત્તિ ટીકા લિખી હુઈ હૈ. इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो कारण कार्य नियम पुस्तक रूप से अपने हाथ में है. अभी हम ये पांचवी पुस्तक भाग पांच जो लिखा है ना उसमें 66 नंबर के पृष्ठ पर आ गए. 66 सेकंड पैराग्राफ यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं. देखो क्या कहते हैं. शुभ अशुभ भाव ने नष्ट करी परम वितराग भाव थी. ये परम वितराग भाव थी ये भी पर्याय की बात है. त्रिकाण निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा नो स्व आश्रय लई ने जिस पर्याय ने आश्रय लिया स्व आश्रय लिया वो तो वितराग पर्याय ही है. नहीं समझे. देखो पहले शुभाशुभ राग में अटका था जीव. अब उसने पहले निर्णय कर लिया कि मैं कौन हूँ. ये जो द्रव्य पर स्वभाव कहो या कारण परमात्मा कहो जो त्रिकाल निरावरण शुद्ध है अब उसने पर्याय में उसका लक्ष्य किया तो वो पर्याय कैसी उत्पन्न हुई तो वीतराग भाव रूप से. पहले राग भाव रूप से थी अभी वो वीतराग भाव से हो गई. इसलिए क्या कहा शुभ अशुभ भाव ने नष्ट करी परम वीतराग भाव थी. किसका आश्रय लिया त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा नो स्व आश्रय लईने. स्व आश्रय लईने आयो ने निश्चय धर्म ध्यान थी. अभी धर्म ध्यान में भी निश्चय शब्द लगाया क्योंकि व्यवहार से भी धर्म ध्यान कहने में आता है. जो हम अलग अलग नाम उसके है मालूम है कौन से है. चार प्रकार धर्म ध्यान के. हाँ आज्ञा विचय अपाय विचय विपाक विचय संस्थान विचय. तो कहते हैं कि ये जो शास्त्र संबंधी जो वहाँ चिंतन या उसका ध्यान चलता है वो सविकल्प है उसको व्यवहार से कह देते हैं परंतु यहाँ निश्चय धर्म ध्यान ने आत्मा में लीनता. तो निश्चय धर्म ध्यान थी. ए निश्चय धर्म ध्यान थी अने दूसरा कौन सा ध्यान है तो शुक्ल ध्यान. उसका वर्णन किया कैसे किया टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वरूप मां लीन परम शुक्ल ध्यान थी. स्थिरता और अधिक है वितराग भी अधिक है जिसको हम श्रेणी में ये शुक्ल ध्यान कहने में आता है. आ बीजी बात पहला धर्म ध्यान किदु बीजू शुक्ल ध्यान शुद्ध कारण परमात्मा ने स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान थी अने टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वरूप मां लीन परम शुक्ल ध्यान अत्यारे ए शुक्ल ध्यान नथी. उसका अर्थ क्या है सुशीला बेन. अत्यारे हाँ अभी इस पंचम काल में जीव ना उपशम श्रेणी चढ़ सकता है ना क्षप श्रेणी. हाँ छठे सातवें गुण स्थान तक तो मुनि अवस्था तो है इस काल के अंत तक. तो यहाँ कहते कि अत्यारे शुक्ल ध्यान नथी टंकोत्कीर्ण ज्ञायक. टंकोत्कीर्ण एटले शाश्वत ज्ञायक प्रभु अंदर जानना 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 रहा हा एक स्वरूप मां. और वो कैसा एक स्वरूप जैसा का वैसा अनादि से अनंत काल तक. उसमें कोई हीनाधिकता वधघट या कोई चेंजेस उसमें नहीं. पर्याय में होते हैं, परंतु एक स्वरूप कैसा है? एक स्वरूप में ज्ञायक स्वभाव एक स्वरूप छे, द्विविधा एमा नथी। द्विविध ने बे प्रकार या अनेक प्रकार, द्विविधा एटले द्रव्य ने पर्याय बे भेद पण नथी, कोई भेद उसमें नहीं है। एकलो ज्ञायक चैतन्य बिंब प्रभु, आप पूछेंगे क्या अनंत गुण नहीं है? गुण है, पर उसका अखंड एक रूप है। समझने के लिए भेद करके समझाया था, परंतु वस्तु में कोई भेद नहीं, वस्तु अखंड है। ये तो बार बार आती है ना बात अखंड करके। तो कहते ज्ञायक स्वभाव एक स्वरूप छे, सेकंड लाइन अभी पढ़ते। एकलो ज्ञायक चैतन्य बिंब प्रभु, आवी बात जैन मां जन्म्या एने पण काने पड़ती नथी। तो अन्य ने तो बिचारे ने क्या साची बात काने पड़े, क्या कह रहे हैं? जैनों को भी वो सही उपदेश सुनने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जानने वाले थोड़े विरले हैं और इसका उपदेश देने वाले भी विरले। तो ये तो बाकी समाज में तो धूमधाम हो हा चलती है ना, ये व्रत करो वो करो, अभी यहाँ तक आए फिर आगे का व्रत ले, अभी प्रतिमा ले लो, फिर ये तो कहते कि उसी को धर्म मान कर चलती है बात। कहते बधो फेरफार घणो, भाई घना वर्ष थी तो आ कहता आवीए छे ने, केटलाक ने निश्चय लागे। ए तो निश्चय छे, ए तो एकांत निश्चय छे, व्यवहार आवतो नथी, व्यवहार आवतो नथी कीधुं नहीं? अशुभ वंचनार्थे कोई वक्ते व्यवहार आवे छे, अने ए करवा योग्य छे एम पण कयुं, कोई वक्ते, सदाय नहीं। और वो किस अपेक्षा से? अशुभ से बचने के लिए। सदा करवा योग्य हो तो ए शुभाशुभ विकल्प थी छूटी, वचन नो संबंध छोड़ी ने, एक तो विकल्प का त्याग, फिर वचन जो अंतर जल्प हो बहिर्जल्प उसको भी छोड़कर अंतर मां स्व आश्रित जाऊं। कारण परमात्मा नित्य शुद्ध जे भगवान, भगवान ने मैं स्वयं एनो आश्रय लईने अंदर जाऊं। हर एक के लिए अपना अपना, अभी कहाँ ढूंढने को जाना है, कौन से पर्वत पर जाएंगे तो मिलेंगे ये भगवान। ए पुण्यना वचनना विकल्पनो आश्रय न लेवो आवो मार्ग। देखो इन्हें वचन विकल्प में नहीं, भगवान की भक्ति है, स्तुति है, गुणगान करेंगे, तो कहते कि उसको भी छोड़कर अंतरंग में जाने की बात है यहाँ पर। और वो आते हैं अशुभ को टालने के लिए, उससे बचने के लिए, ऐसे शुभ भाव ज्ञानी के भी आते हैं, परंतु वो भी कैसे है तो छोड़ने लायक है। पेज नंबर 66 लास्ट पैराग्राफ अभी हम पढ़ेंगे। स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान थी अने टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वरूप मां लीन परम शुक्ल ध्यान थी। शाश्वत ज्ञायक स्वरूप मां लीन परम शुक्ल ध्यान, लीन एटले एकाकार, धर्म ध्यान मां थोड़ो लीन छे, क्या कहते हैं उसमें स्थिरता जो है उसमें डिफरेंस है। वो धर्म ध्यान में अभी तो नीचे के स्टेज में है, वितरागता भी कम है, अल्प है, और यहाँ बिल्कुल पूर्ण लीनता है। ए परम वितराग भाव मा लीन, नहीं परम वितराग तपश्चरण मा लीन, ए परम वितराग भाव ए तपश्चर्या, राग भाव ए अतपस्या। मनीषा बहन को हंसी आती है, और हमने तो उपवास को ही तपस्या माना था, और वो क्या है? वो तो क्रिया है, और उसके पीछे वाला जो है वो राग भाव है, विकल्प है, शुभ भाव है। हाँ, आपका ये प्रश्न है क्या दोनों एक साथ होगा क्या नहीं होगा, तो मुझे आप बताओ धर्म ध्यान के गुणस्थान कौन से है, शुक्ल ध्यान के गुणस्थान कौन से, आप ही बताना। किसके? शुक्ल ध्यान के। हाँ, आठवें के बाद एकदम बारवा लिया, क्यों? बीच नौवे दसवे को छोड़ दिया, वहाँ ध्यान नहीं है,
ध्यान तो है,
तो आप ही बोलो। देखो देखो धर्म ध्यान के गुणस्थान मालूम है किसी को? हाँ, चार से सात, अभी एक अपेक्षा ग्यारहवें तक लिया है धवला में, उसकी बात नहीं है, तो सामान्य से चार पाँच छः सात ये धर्म ध्यान के गुणस्थान, और आठ से लेकर उपशम श्रेणी में भी और क्षपक श्रेणी में भी। हाँ तो हाँ,
सातवें गुणस्थान में भी शुक्ल ध्यान हो सकता है ना?
नहीं,
आठवें से शुरू होगा।
आठवें से शुक्ल ध्यान शुरू होता है।
अच्छा,
यानी उपशम श्रेणी वाले आठ नौ दस ग्यारह, क्षपक श्रेणी वाले आठ नौ दस बारह, उसमें कौन से दो शुक्ल ध्यान होते हैं? पहले में पहले पृथक वितर्क विचार, पहले विचार यानी संक्रमण, वितर्क का अर्थ होता है श्रुत, श्रुत के आगम के कोई जो श्रुत ज्ञान जो है, और बाद में क्या होता है एक ही विषय, पहले तो यानी द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय वगैरह, योग से युगांतर वगैरह चेंज होते रहता है, अब यहाँ पर एक ही यानी वो तो नक्की है उसी पर स्थिर होगा, योग भी वही रहेगा, वो बारहवें के अंत में जाके हो जाता है। एकत्व वितर्क अविचार बारहवें गुणस्थान का संख्यात्वा भाग बच गया तब जाके होता है, और उसके होने के पश्चात इमीडिएट केवल ज्ञान हो जाता है। तो ये शुक्ल ध्यान पहले दो पाए, ये तो कथन करने या पूजा करने वालों को या तो मालूम नहीं है, हाँ, या फिर ऐसा कहीं जनरली कुछ कह दिया क्योंकि उसके बाद उन्होंने बोला नहीं तो निरोध कर दिया या वाणी नहीं, उन्होंने कहीं पूजा में आता है एक महीने के लिए योग निरोध किया, निवृत्त हुआ यानी वो दिव्य ध्वनि नहीं छूटी, वहां जाके स्थिर हो गए, ऐसा आता है ना, परसों किस पूजा में आया था, आता एक मास की बात आती है कहीं के, पर वो तो योग का निरोध होगा, वो तो तेरहवें के अंत में ही होगा, और वो तो अंतर्मुहूर्त में ही होगा, भले वो जो बाह्य से उनकी जो वाणी नहीं खीरी होगी या जो कुछ है उस अपेक्षा से कहेंगे वहां जाके स्थिर हो गया है, यानी वो विहार अभी रुक गया है, इस अपेक्षा से लेना उसको। ना 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 ना, वो दो महीना तो बंद काल है, क्या हाँ देखो देखो आप घोटाला कर रहे हैं, श्रेणी का काल अंतर्मूर्त है, दो महीना और एक महीना किसका गिनते हैं हम? वो श्रेणी नवे गुणस्थान में स्थिति बंध कितना है उसकी बात है, ये नहीं समझे? देखो फिर आप लक्ष्मी बेन सु क्या पूछते थे कि नवे गुणस्थान में क्रोध का दो महीने काल जो हमने देखा, तो अंतिम स्थिति बंध जहाँ क्रोध का उदय भी रुक गया है और बंद भी रुक गया है, वहाँ क्रोध मान माया लोभ दो महीने के बनते हैं। एक अंतर्मूर्त आगे जाकर अभी क्रोध का बंध रुक गया, फिर मान का बंध जहाँ रुकता है लास्ट में तो एक महीने का होता है, वहाँ एक महीना मान माया लोभ का बंध हुआ था, वो स्थिति बंध है। और अभी जो हम बात कर रहे थे योग की निरोध की बात है, देखो देखो उदय की उच्चति वहीं पर होती जहां बंध की उच्चति है, किसकी? हाँ जब उदय की उच्चति हुई पर दो महीने का बंधा पड़ा है ना वहां पर, सत्ता में पड़ा है, हाँ बंध के बाद सत्ता में पड़ा रहता है, और सत्ता में पड़े पड़े अन्य रूप होकर नष्ट हो जाएगा वो, यानी इतना बंधा है तो इतने काल तक उसका उदय आना चाहिए ये कोई बात नहीं है, हाँ सत्ता है, और वो तो अभी क्रोध का भी उदय मिट गया है, नया बंध भी रुक गया है, तो नया नया जो बंधा है वो तो संक्रमित होकर नष्ट हो जाता है। हाँ होने दो ना, वो सब उसमें देखो 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 फिर से सुनना, आपका ये प्रश्न है सत्ता है तो सत्ता में तो अन्य जो कर्म पड़ा था ना, कौन से अघाती कर्मों की बात कर, ये तो घाती कर्म तो नष्ट होने ही वाले हैं, ये तो दसवें में ही नष्ट होने वाले हैं सारे, तो बाकी भी कर्म पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण रहते हैं और उसके वो स्थिति कांडक वगैरह होते रहते हैं। अब यहाँ पर भी जो बंधे है उसमें क्या प्रोसेस होते हैं वो हमने लब्धिसार में देखा था, क्षपक श्रेणी में और उपशम श्रेणी में क्या क्या होता है, अब जो नया नया लास्ट में क्रोध बंद हुआ और रुक गया, अभी उसका उदय तो आने वाला नहीं है। जो सत्ता में पड़ा है वो उसकी क्षपणा कैसे हो गए, तो मान रूप होकर नष्ट हो जाएगा। वो संक्रमण से ही नष्ट होता है, मान है वो माया रूप से होकर नष्ट हो जाएगा। इस तरह से
ये जो क्रोध है वो मान माया रूप से
नहीं, वहां बंधने वाले ही रूप हो जाता है, वो बनते उस रूप होता है। आप जरा वो क्षपक श्रेणी का फिर निकाल के पढ़ना, क्योंकि उसमें इतने प्रोसेसेस होते हैं ना कि वो तो कंफ्यूजन बहुत होता है। आपको चाहिए तो अभी लब्धिसार में से पढ़कर बताती हूँ आपको। कृष्टि वगैरह होती है, हाँ वो तो नौ में ही होती है, वो तो सभी क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, सबकी की, जो क्रोध से उदय से चढ़ता है उसकी सबकी कृष्टियाँ होगी। और फिर वो तो बादर कृष्टि, फिर सूक्ष्म कृष्टि, वो संग्रह कृष्टि वगैरह बहुत बातें होती है उसके अंदर। हाँ इन्हें लंबा प्रोसेस है वो। एक अंतर में पढ़ने जाओ तो टाइम लगता है ना। क्या कहते हैं, यहाँ बात कहाँ से हुई थी, परम शुक्ल ध्यान की। तो शुक्ल ध्यान के दो पाए हुए, तीसरा शुक्ल ध्यान कहाँ होता है? तेरवे के अंत में, अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, प्रतिपाती नहीं अप्रतिपाती, यानी जो योग का निरोध हुआ हुआ तो कैसे हुआ, पहले सूक्ष्म हो गया, योग को सूक्ष्म कर दिया, और सूक्ष्म कर दिया फिर वो निरोध कर दिया। अभी ये जो प्रोसेस है यानी सूक्ष्म करने का, उसको कहा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। फिर चौदहवें में योग का पूरा निरोध हो गया है, अंतर्मूर्ति होता है ये। योग का निरोध किया ऐसा जो महीने की बात बताते हैं ना, वो तो बहुत स्थूल कथन है। कथन इसलिए कि शायद उनका विहार रुक गया है, उनकी वाणी रुक गई इस तरह से। अभी वो किस अपेक्षा से योग निरोध कहते हैं, क्योंकि वो तो योग निवृत्ति ने वो बाहर की प्रवृत्ति रुक गई है, यही उसका अर्थ। हाँ योग निरोध तो अंतर्मूर्त पहले ही होता है। हाँ निवृत्ति ने वो तो जिसको हम कहें मन वचन काय समारी के जो कहते हैं ना, उस अपेक्षा से वो बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्त हुए है। विहार रुक जाएगा क्योंकि वहां जाके वो जहाँ से मोक्ष जाना है वहां जाके स्थिर हो गए, ऐसा भी आता है ना। हाँ हो सकता है ना, किसी का क्या है। हाँ अंतर्मूर्त में हो जाता है, पर सभी तीर्थंकरों को एक अंतर्मूर्त कैसे होगा? तीर्थंकरों के लिए बताया होगा। हाँ तो अंतर्मूर्त वाला कोई तीर्थंकर नहीं होता। बिल्कुल एक मास लिखा है, वही तो निवृत्ति काल लिखा है। आप वहीं पर पूछ रहे हैं, कोई कोई अंतर्मूर्त में जाते हैं मोक्ष। हाँ वो छह दिन में होते ना, छह दिन में केवल ज्ञान हुआ। देखो केवल ज्ञान हुआ जो तीर्थंकर है, तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो पृथक्त्व वर्षों तक चलेगा ही चलेगा। यानी सामान्य केवली तो अंतर्मूर्त में तेरवा पार करके चौदवा पार करके मोक्ष जा सकते, तीर्थंकर को ऐसी छूट नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा तो समोसरण, उनको समोसरण चलेगा ही उनको कुछ सालों तक, तो उनके लिए मास ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि पृथक्त्व वर्ष, पृथक्त्व कैन बी एनीथिंग, केवल 3 से 8 वर्ष इतना ही नहीं समझना, यथा योग्य। यानी अनेक वर्षों तक उनका तीर्थ समोसरण वगैरह लगेगा। यानी उनका 13वें गुणस्थान का काल कभी अंतर्मूर्त नहीं होगा तीर्थंकरों का। जो योग का निरोध जिसको कहेंगे ना, वो तो अंतर्मूर्त पहले ही होगा। अब बाह्य में जो निवृत्ति कह रहे हैं उसके लिए महीने का कथन आता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हम ये तो शुक्ल ध्यान की बात हो रही, तो 13वें के अंत में तीसरा शुक्ल ध्यान और 14वें में विपरीत क्रिया निवृत्ति। अभी ये जो योग का निरोध हो गया वो रिवर्सिबल नहीं है, बस इतना समझना। हाँ, यहाँ क्या बात होती थी कि धर्म ध्यान में लीनता कम है और शुक्ल ध्यान में ज्यादा है, इस पर ही आपका प्रश्न था ना। देखो फिर से नीचे से चौथी लाइन, धर्म ध्यान में थोड़ो लीन छे, शुक्ल ध्यान में विशेष लीन छे।
यानी वो चौथी से सबसे बहुत कम काल तक वो रहता है, बाद में वो श्रेणी चढ़ता है उसमें ज्यादा है।
काल तो और कम होता है, उल्टा है। ऊपर के गुणस्थानों के काल कम है, वो भले थोड़े इस काल के लिए मतलब स्थिरता बहुत है, गहराई ज्यादा है उसके, एकदम लीनता ज्यादा है। इस तरह से लेना, यानी ऐसा नहीं लेने का ये चौथे वाले का काल छोटा है और पांचवे का ज्यादा है, और ऐसा समझते थे हम, पर ऐसा नहीं है। एकाग्रता अधिकता है, स्थिरता अधिक है, जिसको उंडान जिसको कहेंगे, लीनता ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे उसको। क्योंकि हमने देखा है छठे से सातवें का काल आधा है, ऊपर ऊपर के उसके संख्यात विभाग है, निर्जरा ज्यादा है, परंतु वो काल उसके अंतर्मूर्त का काल बहुत छोटे छोटे होता चला जाता है। तो परम वितराग भाव ये तपश्चर्या कहा, राग ये अतपस्या। नीचे से दूसरी लाइन, अने राग थी आत्मा भिन्न पड़ी। देखो राग से मैं जुदा हूं ये पहले हमने नक्की किया था, फिर अंतर में एकाग्र हुए तो अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव हुआ, अपने ज्ञान मात्र अनुभव हुआ, तो राग से भिन्न पड़ गए। तो राग थी आत्मा भिन्न पड़ी, वितराग भाव थी लीन था, यानी वो लीनता होती है तो वितराग भाव प्रकट हो रहा है। मिला लास्ट पेरे, नीचे से दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं। अभी हमारे धर्म ध्यान की और शुक्ल ध्यान की चर्चा हुई ना अभी। छूट गया। हाँ, कोई बात नहीं, अरविंद भाई आए तो हम नीचे के पैराग्राफ में थे। और बाकी हम स्टार्टिंग हमने ऊपर से दूसरे पैराग्राफ से की थी। ख्याल में आई बात। ये तपश्चर्या आत्मानी तपस्या, बाकी आत्माना वितराग तरफना वलन विना जे तपस्या करे ये तो बधी लांगनू छे। यानी उपवास को ही तपस्या मानने वालों के लिए ये बता रहे हैं। परम वितराग तपश्चरण मा, भाषा केवी लीधी, परम शुक्ल ध्यान थी जे परम वितराग तपश्चरण, ए शुक्ल ध्यान ए परम तपस्या छे। यानी बिल्कुल अंतरंग में विलीनता बहुत है और वितरागता भी अधिक है। तपस्यानो अर्थ स्वरूपनी शुद्धिनी वृद्धि थवी, उसका अर्थ है तपस्या। समय समय वो शुद्धि की वृद्धि होती जाती है, अने अशुद्धिनो नाश थवो एनु नाम तपस्या छे। आ तो हजी आत्मानी तो खबर पण न मळे कि आत्मा कोण छे, तपस्या करवा मंडी पड़िया वर्षी तप ने। उसके ज्यादा जरा बोलबाला है ना। परम वितराग तपश्चरण, भाषा केवी छे, परम वितराग भाव ए तपस्या छे, राग ए अतपस्या छे। चाहे तो दयादान व्रत भक्ति नो राग होय, अपवास करीने अपवास करू छूं एवो राग ए तपस्या नथी। मैं छठ करियो, मैं अठम करियो, मैं आठ दी अपवास किया है तो विकल्प राग छे, राग ए तपस्या नथी। क्योंकि जीव ने तो विकल्प किया, वो भोजन नहीं गया पेट में तो उसकी योग्यता से नहीं गया, पर उसने क्या, उसमें तो विकल्प आया कि मैं इसका त्याग करूं, है ना, तो राग ए तपस्या नथी। एमा स्व आत्मानो आश्रय नथी, जेमा स्व आत्मानो आश्रय नथी तेने धर्म ध्यान नथी। जो व्यवहार से भी जो धर्म ध्यान कहने में आता है, जिसको स्वात्मा का आश्रय है उसके साथ उसके जो विकल्पात्मक बात होगी उसको व्यवहार से भी धर्म ध्यान कहेंगे। अब ये मिथ्या दृष्टि है और वो सविकल्प अवस्था कुछ कहता है या सोचता रहता है, विकल्प करता है, और ये हमारा हाँ, तो निश्चय बिना उसको व्यवहार से भी उसको धर्म ध्यान नाम नहीं देंगे। उग्रपणे स्वात्मानो आश्रय ले तेने शुक्ल ध्यान चे, ये उग्रपणा लिया ना, लीनता अधिक है उसको उग्र कहा, आविवाद छे आ समाधि अधिकार छे, लोगस्मा आवे छे, लोगस्मा नहीं मोड़े करियो हो तो समाहि वर्णम उत्तमम दिंतु, लोगस्मा आवे छे आ तो 10 वर्षनी उम्र थी करेलू छे, आ तो 91 वर्ष थया, 81 वर्ष थी नौकार करियो, नौकार तिक्खुत्तो, वो डबलता है ना, उस दिन मैंने बोला था वहाँ तिक्खुत्तो लिखा था, ये तिक्खुत्तो, ये बधु अमारे उमराणामां निशाळ चालती, एक आंधळा सोमचंद भगत हता ए भणावता हता, तेदी ओ तेदी थी आ बधी परीक्षा आपता, सामायिक परिक्रमणा बधा परिक्रमणो त्यां दुकान उपर हूँ पालेजमां करावतो, पर्युषणमां 8 दी हो पछी काई नाम बाम नहीं, 8 दी पर्युषण हो तो सांजे बधा भेगा थई प्रतिक्रमण करे अने जाने थई गयो धर्म। उत्तर ए मिथ्यात्व ए मोटू पाप छे, ए गयू नथी, राग ने करता धर्म थाय ए मिथ्यात्व छे। क्या कहा? राग करने से वो धर्म होता है ये मान्यता ये मिथ्यात्व है, और आगे क्या लिखा है?
महापाप
है। और ये क्या मान रहा है? मैं धर्म कर रहा ए नरक ने निगोदनु मूळियो छे, मिथ्यात्व ए ज संसार छे, આવે છે ને, મિથ્યા તો એ રખડવાનો સંસાર છે, ઘણે ઠેકાણે અર્થ આવે છે, હા હા, મિથ્યા તો કોને કહેવું એની ખબર ન મળે, એ રાગની ક્રિયા વચનની વાણીની, વાક્ય અધૂરા હૈ પરંતુ એ મેરી હૈ એસા માનતા હૈ ઓર ઉસ કરને સે ધર્મ હોતા હૈ એસા ભી માન્યતા હૈ। મુમુક્ષુ આપણા ધર્મમાં ન હોય બધા મિથ્યા દૃષ્ટિ, અત્યાર એ બધા મિથ્યા દૃષ્ટિ, પણ જૈનના ધર્મમાં રહેલા છો, વાડામાં પડ્યા છો, એ તમે મિથ્યા દૃષ્ટિ છો। જૈનમાં જન્મ ઇસલિયો સમય દૃષ્ટિ નહીં હોતા હૈ, જબ તક સહી માન્યતા નહીં હોગી, ભલે વો જૈન ભી ક્યો ન હો, તબ તક ઉસકો સમય દર્શન નહીં હોગા।
યાને ઉનકો સુનને વાલે અધિકાંશ યે વાડા મે સે હી લોગ આયે થે, કોઈ મુશ્કિલ સે મૂળ દિગંબર જાતે થે, और जो जाएंगे वो विरोध करने जाते थे और सुनकर उन्हीं के चेले बनते थे। हमें तो दो नाम पक्का मालूम है, एक कैलाश चंद जी बुलंदशहर वाले और बाबू भाई मेहता
नेमचंद जी रखियाल वाले, ये सब ऐसे ही थे,
विरोध करने नहीं गए थे।
जुगल जी अन्यमति थे। मगर वो पक्के चेले हो गए गुरुदेव के।
जैन नहीं थे
ऐसा मुझे सुना है शायद मैंने, वैष्णव या कुछ अन्य हो गए, जरा देख लो पक्का कर लो, इन्हें पूछना हाँ, किसी को भी पूछो ना, हाँ उनकी फ्रेंडशिप है ना, आप पूछ लेना। अरे कौन थे उससे क्या मतलब है, क्या हुए उससे मतलब है, हाँ गलत बात नहीं होनी चाहिए, वो बात सही है। अब ये जो वर्णी जी हुए थे, गणित प्रसाद वर्णी, वो भी तो वो किसी महिला ने उनको बचपन से पाल पोस कर रहे थे, तो सारे जैन के संस्कार पड़े, पर वो मूल से जैन नहीं थे। बहुत ऐसे हुए ना, जो देखो जन्म से किस कुल में जन्मे उससे कुछ मतलब नहीं है, उन्होंने कैसे अपनाया और कैसे आगे पुरुषार्थ किया ये बात महत्व की है। अरे वो तो गणधर से ही बात ये चली आ रही है, साउथ के कितने ही आचार्य जो हुए हैं वो अन्यमति ही थे। हाँ हाँ गुरुदेव की भी है वही के। हाँ देखो अभी क्या कह रहे हैं लास्ट पैराग्राफ अंतरमा राग थी रहित स्व आश्रय करे तेने जघन्य दरज्जा नु निश्चय धर्म ध्यान थाय अने उत्कृष्टपणे वितराग भावे स्व आश्रय करे एने शुक्ल ध्यान थाय। આવું તો તમારા બાપે રામજીભાઈએ ત્યાં સાંભળ્યું નહોતું, જાતા સામાયિક કરતા અને ગાતા જજ હતા નહીં ક્યાં હિંમતનગરમાં, એ વાત હતી જ નહીં શું કરે, એ બિચારા હોશિયાર હતા, બહુ મગજવાળા હતા આના બાપ રામજીભાઈ, પણ આ વાત હતી નહીં શું કરે। शायद वो सुमन भाई के सामने बोल रहे हैं तभी सामने नहीं हो गए, जज भी हुए होंगे बाद में पता नहीं। अत्यारे पन सामणी ने केटलाक ने तो एम थाय के आऊ आऊ के दी थाय त्यारे, पन एवू थया विना जन्म मरण मटे एवा नथी, मरी जा तारी क्रियाकांड करीने अपवास ने चोवियार શરીરથી જાવત જીવનું બ્રહ્મચર્ય પાળે એ ધર્મ નથી, એ શુભ ભાવ છે। બ્રહ્મચર્ય તો એને કહીએ, બ્રહ્મ એટલે આત્મા, આનંદ, નિરાવરણ, તેમાં ચરવું એનું નામ બ્રહ્મચર્ય। દરેકની વ્યાખ્યા જુદી છે પ્રભુ। આહા હા, પદ્મનંદીનું કહ્યું નહોતું, પદ્મનંદી શાસ્ત્ર છે, એ પદ્મનંદી આચાર્યએ પદ્મનંદી પંચવિંશતિકા નામ કા ઉનકા શાસ્ત્ર હૈ। अपना हुआ ना यहाँ पर नहीं हुआ, लघु तत्व स्फोट हुआ है, पद्मनंदी पंचविंशति का नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। एमा ब्रह्मचर्य की व्याख्या एवी वर्णवी छे, खूब वर्णवी, के तमारी काया थी ब्रह्मचर्य पाळो ए ब्रह्मचर्य नथी, मन वाणी अने काया थी ब्रह्मचर्य पाळो કે જાવત જીવતી અમે બાળ બ્રહ્મચારી છીએ, બાળ બ્રહ્મચારી એ ધર્મ નથી, એ તો શુભ ભાવ હૈ, એ તો રાગ શુભરાગ છે। અંતર ચૈતન્ય આનંદ મૂર્તિમાં રમણતા કરતા જે આનંદ આવે એને નિશ્ચય બ્રહ્મચર્ય કહેવામાં આવે। ચરના એને ઉસમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ જો આત્મા હૈ ઉસમે ચરના રમના उसको ये निश्चय ब्रह्मचर्य। ये सभी पर लगा ना, ये जो अभी हम समाधि देख रहे हैं वही बात है, प्रतिक्रमण वही बात है, कायोत्सर्ग वही बात हमने देखी। पद्मनंदी पंचविंशति विंशतिम ने विंशति ग्रंथ शास्त्र छे एमा खूब वर्णन कर्यु छे, करीने पछी ब्रह्मचर्य नु बहु वर्णन करता साधारण जुवान मानसो अने जुवान अवस्था, जुवान बाईडी होय, જુવાનીમાં પૈસા પૈસા ઠીક હોય એને આવી વાત આમ ઠીક ન લાગે, તો મુનિરાજ કહે છે કે મેં આ બ્રહ્મચર્યની વ્યાખ્યા કરી એ તમને ન રૂચે તો માફ કરજો, હું મુનિ છું, મારી પાસેથી શું લેશો, મારી પાસે છે એ આવશે। પદ્મનંદી પંચવિંશતિમાં એમ કહ્યું છે, હજારો શાસ્ત્રો જોયા છે, છેલ્લો 26મો અધિકાર છે, વો નામ પંચવિંશતિ પણ ઉસમે 26 અધિકાર લિખાયા ગયા, નામ પદ્મનંદી પંચવિંશતિ, વીકે ઉપર બિંદી લગાના, પણ 26માં બ્રહ્મચર્યનો અધિકાર છે, 26મો ચાહીએ ને, 26માં ને, ના ના 26 અધિકાર 26માં,
26માં બ્રહ્મચર્યનો અધિકાર છે,
ઠીક હૈ 26માં, ઠીક હૈ, ગાથા થોડી છે પણ વર્ણન બહુ। મન વચન કાયાથી બ્રહ્મચર્ય પાળે એ બ્રહ્મચર્ય નહીં, આત્માના આશ્રય જે અંદર રમણતા થાય અને રાગથી છૂટે અને અંદરમાં લીનતા થાય એ બ્રહ્મચર્ય। બ્રહ્મ એટલે આત્મા, એમાં ચર્ય નામ રમત, એનું નામ બ્રહ્મચર્ય છે, બાકી બધું અબ્રહ્મચર્ય છે। વાતે વાતે ફેર, ઓલા કહે છે ને આનંદ કહે પરમાનંદા, માણસે માણસે ફેર, એક વાતે ને એક લાખે, એક લાખે ન મળે એક તાંબાના તેર, વાતે વાતે ફેર છે. દુનિયાની માન્યતાને વિતરાગની માન્યતામાં વાતે વાતે ફેર છે. હરેક બાત બાત મેં ઉસમે ડિફરન્સ હૈ, ફેર છે ને, ડિફરન્સ હૈ. એક સ્વરૂપમાં, એક સ્વરૂપ અને વો સ્વરૂપ કૈસા, એક સદૃશ હૈ. તો એક સ્વરૂપમાં લીન પરમ શુક્લ ધ્યાનથી જે પરમ વિતરાગ તપશ્ચરણમાં લીન, ભાષા જુઓ, પરમ શુક્લ ધ્યાનથી, વો પરમ શુક્લ ધ્યાન ક્યાં હૈ, વો અંતર મેં બિલકુલ લીનતા હૈ. ઓર વો કૈસા હૈ તો પરમ વિતરાગ તપશ્ચરણ હૈ, ઉસે મેં લીન. નિરુપરાગ એને નિર્વિકાર, ઉપરાગ એને વો તો વિકાર, ઉસે રહિત સંયમી ધ્યાવે છે. એને શુક્લ ધ્યાન સે અપને સ્વરૂપ કો ધ્યાતે હૈ. કિસકો? એક સ્વરૂપ કો. અંદર વસ્તુને ધ્યાનમાં લીધી છે અને ધ્યાન કરે છે. તે દ્રવ્યકર્મ ભાવકર્મની સેનાને લૂંટનાર. કલ ઓબ્જેક્શન આપને લ્યા થા ને, કિસને આપને બતાયા થા, લૂંટ લૂંટને વાલા અચ્છા નહીં લગતા હૈ. ઓર લૂંટને વાલે શબ્દ લૂંટનાર શબ્દ હૈ ના, તો કહે ઉનકો જરા ડિસ્ટર્બ ના. અરે યહાં તો અરિહંતોં કો ફિર અરિહંત કહે દિયા. મોહ રાગ દ્વેષ રૂપી જો દેખો, યે વિકાર રૂપી સેના કહો, વો શત્રુ કહો, સેનાને લૂંટનાર. હા હા, એ તો દ્રવ્યકર્મનો જડનો પણ નાશ થઈ જાય છે. ઉનોને નાશ કિયા વો તો કહેને કી બાત હૈ. અને પુણ્ય પાપ ભાવકર્મ છે એનો પણ સ્વ આશ્રય ધ્યાન કરતા નાશ થઈ જાય છે. માટે ખરું ધ્યાન એ સ્વનો આશ્રય લેવો. તે ઉસ સમય જીવ ક્યાં કર રહા હૈ, અપને આશ્રય લેકર બિલકુલ ગહેરાઈ સે ઉસી મેં લીન હો ગયા હૈ. ઉસ સમય કર્મ અપને સ્વયં કે કારણ જો જો યથા યોગ્ય જહાં જો બંધના રુકના હૈ, ઉદય રુકના હૈ, જો કોઈ સંક્રમણ હોકર નષ્ટ હોના હૈ, ક્ષપના હોની હૈ, સબ હો રહે. મુનિરાજ તો અપને આનંદ મેં લીન હૈ, વો તો આનંદ કા અનુભવ કર રહે. વો કોનસા કર્મ ગયા, અભી કોનસા બાકી હૈ, નહીં થોડા બાકી, અભી ઓર જરા નિર્જરા કરની, એસી કોઈ બાત વહા નહીં. વો સહજ પ્રોસેસ હૈ, પરંતુ વો જ્ઞાન કા ગેય તરીકે સે લબ્ધિસાર આદિ ગ્રંથો મેં ઉસકા ઇતના વિસ્તાર સે વર્ણન, ક્યોંકિ કેવલ જ્ઞાની ક્યા નહીં જાનેંગે, સબ કુછ જાનતે. તો જો જીવ અપને આત્મા મેં ઇતના લીન હૈ, ઉસમે સામને કર્મો કી અવસ્થા કૈસી કૈસી હોતી હૈ, વો બાત વહા બતાઈ. ઓર એસા કહેંગે ભી, જીવને કર્મ કો ઉપશમાયા, યા જીવને ઉસકે ક્ષપના કી, ઉસને ઇસકો ઇસ તરહ સે કથન હોગા. હા, યહાં યહી કહેતે ને, વો તો દ્રવ્ય કર્મ કા નાશ કર દિયા. અબ 69, હા, સેના કો લૂટ લ્યા. ચૈતન્ય ભગવાન અંદર બિરાજે છે, પૂર્ણાનંદનો નાથ ત્રિકાળ નિરાવરણ છે, અખંડ આનંદ છે. એનું ધ્યાન કરવાથી દ્રવ્યકર્મને ભાવકર્મનો નાશ થાય છે. ભાવકર્મ નયા ઉત્પન્ન નહીં હો રહા હૈ, તો ઉસકા નાશ ક્યા કહેંગે. ઓર દ્રવ્યકર્મ જો પહેલે બંધે થે, વો અધિક માત્રામાં ખીરતે હૈ, ઉસકી નિર્જરા હોતી હૈ અસંખ્યાત ગુણી, તો દોનો કા નાશ હો જાતા હૈ. દ્રવ્યકર્મ એટલે જ્ઞાનાવરણી આદિ જડ, ભાવકર્મ એટલે પુણ્યને પાપ, આવું ઝીણું લાગે. આખો દી સંસારનું કરવું, સંસારનું કરવું, સંસારમાં બાયડી છોકરાને કરવું, 6-7 કલાક સૂવું, હવે આમાં ક્યારે નવરો થાય, તો એ ઝીણું લાગે, કઠિન લાગે. અરે ક્યાં આપણે કો નહીં સમજતા, એ બહુ કડક હૈ ને, અપને લેવલ કી બાત બતા. ઓર યે પૂરી દુનિયાદારી મેં ઇતના દુઃખી હો રહા હૈ, ઇતની આકુલતા વાલી બાત હૈ, વો ઉસકો સહજ લગતી હૈ, વો ઉસકે લેવલ કી લગતી હૈ, ઉસમે તકલીફ નહીં હૈ, વો તો આનંદમય ભાવ હૈ. ઓર યે દુઃખમય ભાવ મેં 24 ઘંટે પડા હૈ, ફિર ભી વો કરને કા મન નહીં હો રહા ઉસકો. તો કહે 6-7, યે તો આમાં ક્યારે નવરો થાય, નિર્ણય કરવા નવરો ક્યારે થાય, અભી સુનને કે લીએ, અભી જો સુનને કો ગયા તો યે ગહેરી બાતે થોડી સમજને હૈ. જબ તક બેસિક કા અભ્યાસ નહીં હૈ, દ્રવ્યગુણ પર્યાય સાત તત્વો કિસકો કહેતે માલુમ નહીં હૈ. ઓર ફિર ભલે સુનને કે લીએ ઘંટા ભી ગયા, જૈસે પહેલે હમ જાતે થે ગુરુદેવ કો સુનતે, તો ક્યા ક્યા સમજતે થે, કુછ નહીં સમજતે થે. હા હા હા, સમજાણું કાંઈ, ये बीच वाली गहरी बातें कहाँ समझते थे, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास नहीं था कभी। यही कह रहे तो अभी निर्णय कैसा कब करेगा, निर्णय करवा नवरो क्या रहता है। कलाक वक्त मळे तो जेना जे संप्रदाय में हो त्या सांभळवा जाए तो कुगुरु एनो कलाक लूटी ले। क्यों कुगुरु कहा, ये व्रत ले लो, अंगीकार करो, चलो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इतना दान दे दो, इतना पर्वत शिखर चढ़ के आओ। एने एम कहे कि तू व्रत कर, लिखा है आगे, तू व्रत कर, अपवास कर, आकर आकर। हाँ, निर्विकार संयमी ध्याता छे, ए ध्यान करनार तो आ संयमी होय छे। आहा, ते द्रव्य कर्म भाव कर्मनी सेना ने लूटनार संयमी ने खरेखर परम समाधि छे। समाहि वर्म उत्तमम दिन्तु लोगसमा आवे छे। समाधि एटले ओला बावानी समाधि नहीं, वो तो पुण्यावचन में भी, पुण्यावचन होता है ना, उसमें भी लास्ट में आते हैं ना, बोधि समाधि वगैरह। हाँ, बोधि लाभ हो, समाधि मरण हो, गई वैसे वैसे बातें आती उसमें। बोधि लाभ हो, सुगति सगमन हो, ऐसी कोई बात आती, और एक बात आती कुछ। समाधि उठले बोला बावानी समाधि नहीं, अहियां तो उपाधि आ संयोग, संयोग थी रहित निरुपाधि, उपाधि थी रहित अंतरनी रागनी ए पण उपाधि, एना थी रहित मननी उपाधि थी रहित कायानी उपाधि थी रहित। क्या कहा, राग कहो या विकल्प कहो, तो मन के उपाधि से, काया के उपाधि से रहित, अंदर आत्मा अने स्वभाव में एकाकार थऊं, ते उपाधि रहित छे, ते विना तो बधी उपाधि छे। यानी उपाधि रहित वो समाधि है और उसके बिना बाकी सब उपाधि है। ए अहीं कहे छे के द्रव्य कर्म भाव कर्मनी सेना पुण्य ने पापना ढगला उत्पन्न थाय अने कर्म ढगला बंधाय। कर्म भू भृताम कहा है ना, किधर कहा है, तथा सूत्र के मंगलाचरण में है। तो पर्वत के पर्वत, हाँ, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृता। जब हम वो सारा कर्मकांड और लब्धिसार पढ़ते हैं तो ख्याल में आता है, इतनी सब निर्जरा हो रही, इतनी निर्जरा हो रही, इतनी, अरे तो भी चौदह गुणस्थान के अंतिम समय में कितना कर्म है, तो डेढ़ गुणानि गुणित समय प्रबंध, तो अभी तक क्या गया है सब, अरे वो असंख्यात भाग गया और एक समय में इतना असंख्यात गुना द्रव्य पड़ा है। तो हमें अभी आपकी बात सोचो ही मत, कितना कर्म पड़ा होगा और हर समय कितना बांध रहे, है ना। तो के द्रव्य कर्म भाव कर्मनी जो ढगला है ना, कर्म ढगला बंधाए, एवी सेना ने लूटनार संयमी ने खरेखर परम समाधि छे। आधि व्याधि अने उपाधि थी रहित ते समाधि। आधि व्याधि समझते हो, किसको कहना, यहाँ लिखा देखो, व्याधि एटले शरीर नो रोग। क्या व्याधि है आपको, यानी क्या बीमारी है, व्याधि कहते हैं उसको। आधि एटले मनना विकल्प अने पुण्य पापना विकल्प थाय ए। उपाधि आधि व्याधि त्रण थी रहित, उपाधि तो अभी ऊपर बताए ना, मन के उपाधि, राग की उपाधि, उपाधि संयोगी उपाधि, उस सबको उपाधि कहा, काया की उपाधि वगैरह, उपाधि बाहर नहीं, ये बाहर के जो संयोग आदि सब बाहर के उपाधि कही। व्याधि शरीर नहीं, आधि मन विकल्प नहीं, उपाधि व्याधि अने आ अंतर शू कीधु, आधि व्याधि अने उपाधि थी रहित ते समाधि। आवी वातो छे, भगवान अंदर निरावरण मा जेने उपाधि संयोगी चीज छे, स्त्री कुटुंब परिवार मकान ए तो बधु पर ए उपाधि छे, एना थी रहित। क्या कहे, जिसको हमने भगवान आत्मा कहा, निरावरण है तो उसमें तो कोई उपाधि तो है ही नहीं है। पछी व्याधि, शरीर मा कहीं फेरफार रहा करे तो एनु ध्यान राख्या करे, अने आम साचो अने आम साचो आमा आम साचो, ए व्याधि। आधि एटले अंदर मा संकल्प ने विकल्प, पुण्य ने पाप थाय ए आदि व्याधि उपाधि त्रण थी रहित ते समाधि छे। वाते वाते फेर निर्णय करवानी नवराश न मळे, जिंदगी चाली जाए, नवराशा ने फुर्सत नहीं मिल रही। अब इसको मरण ने नजीक जाए छे, कब से? अरे जन्म के समय से काउंटडाउन तो चालू है, क्योंकि फिक्स समय तो नक्की है, एक समय भी बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। तो जन्मा तब से, और ये क्या करता है? मनाता रहता है, खुशी मनाते, बड़े बर्थडे मनाता है।
तो आपका कहना है राखी बंधन नहीं मनाने का?
राखी बंधन हमने तो हमारे भाई को बता दिया सालों पहले, कि हमारी रक्षा का बंधन आप पर नहीं है, आप अपनी बंधन से अपनी रक्षा करो, बस इतना करो तो बस हो गया। नहीं तो बचपन में हम राखी बना बना के भेजते भी थे, फिर जब ये अभ्यास हो गया तो बता दिया अभी ये बाकी राखी उसमें बंधन में कोई दम नहीं है, है ना? देखो मरणनी नजीक जाए छे, देह छूटवाने नजीक टाइम जाए छे, जे टाइम जाए छे देह छूटवानो टाइम नक्की छे। क्या कहा? एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक चल रहा है, और हमारा तो रूटीन चलता है, सुबह उठते ही जो रूटीन चालू हो जाता है रात को सोते समय तक। एक तो दिन चला, तो ऐसे कितने दिन जाते रहते, तो ये तो मरण तो नजीक ही आ रहा है ना। ये तो जो बचे हुए दिन तो कम ही हो रहे हैं, यही कह रहे। केवड़ी भगवान देखे छे अने एना आयुष्यनु नक्की छे, जे क्षेत्रे जे निमित्ते जे संयोगे देह छूटवानो, उसका निमित्त भी निश्चित है, उसका क्षेत्र, वो रोड पर जाके मरने वाला के घर में मरने वाला। लोग कहते ना, अरे उसका मरण आया था, अरे वहां नहीं जाता तो भी घर में बैठे बैठे मरता, ये बराबर है कि नहीं? उसका जहां जिस क्षेत्र में मरना है वो सब कुछ निश्चित है, जिस विधि से यानी जिस प्रोसेस से या जिस निमित्त से जो हम कहेंगे, जैसा होना है वैसा ही। और ऐसा होने पर मान लेना किसी का एक्सीडेंट से कुछ हो गया या कहीं अन्य ऐसा जो सोचा नहीं था और ऐसा हो गया मरण, तो बाकी लोगों को इतना अंदर अफसोस होता है, अरे मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, बस रात दिन उसी में उलझा रहता है। अभी ये समझाने के लिए बात आसान लगती है, परंतु हाँ पर बाद में तो इसी में लगता है उसका, कि ये नहीं होता तो अच्छा रहता, मैं नहीं उसको भेजती तो अच्छा रहता, ये घर में बैठता तो अच्छा रहता, है न? जे क्षेत्रे जे निमित्ते जे संयोगे देह, तो केवली भगवान के ज्ञान में वो आया होगा कि नहीं होगा? ए छूटवानो काल मृत्यु ने समीप जाए छे, छता इने मृत्यु पहला शू करूं एनी दरकार अने गरज करतो नथी। उसको उसके कुछ भासित नहीं होता कि नहीं मुझे ये करना है और जल्दी करना है। और फिर तब दलील करते हैं हमारा अभी काल पाइतो नथी। हवे आ 122मी गाथा ने टीका पूर्ण करता टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रभु मलधारी देव श्लोक कहे छे 200 नंबर का। ऊपर है ना 200। वंशस्थ समाधिना केनचित उत्तमात्मनाम हृदि स्फुरंतिम समतानुयायिनीम यावन्न विद्मः सहजात्म संपदम नमादृशाम द्रु बराबर करना या विषया विदामही। वो गुजराती सर जैसा कुछ करने जाते हैं, हाँ वो द्रु द्रु अरे वो हाँ। और ये भी गुजराती वाला ही कुछ लिख दिया है उन्होंने, दर्द लिख कर नीचे ऐसे कृष्ण जैसा वो दूर करना है। अभी हम पढ़ेंगे समाधिना केनचित् उत्तमात्मनां हृदि स्फुरन्तीं समतानुयायिनीं यावन्न विद्मः सहजात्मसम्पदं न मादृशां या विषया विदामहे। श्लोकार्थं कोई एवी अवर्णनीय परम समाधि वड़े केनचित उत्तम है ना कोई एवी अवर्णनीय परम समाधि वड़े उत्तम आत्माओना हृदय में उत्तम आत्मनाम हृदि स्फुरति समतानी अनुयायिनी समतानुयायिनी। अभी अनुयायिनी नीचे लिखा अनुयायिनी यानी अनुगामिनी अनु एने टू फॉलो उसके पीछे पीछे चलने वाली साथे साथे रहनारी पाछळ पाछळ आवनारी सहज आत्मसंपदा समाधिनी अनुयायिनी छे यानी समाधि के पीछे पीछे सहज आत्मसंपदा प्राप्त होती है ये कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं फिर से कोई एवी समाधि वड़े यानी अवर्णनीय परम समाधि वड़े उत्तम आत्माओना हृदय में स्फूर्ति एक बात दूसरी बात समतानी अनुयायिनी सहज आत्मसंपदा ने ज्यां सुधी अमे अनुभवता नथी त्यां सुधी अमारा जेवाओनो जे विषय छे तेने अमे अनुभवता नथी। विषय में क्या लिया सहज आत्मसंपदा मुनियोनो विषय छे यानी जब तक उसका अनुभव विषय नहीं होता है वो उनका विषय क्या है किसको वो विषय बनाना चाहिए सहज आत्मसंपदा को जब तक ऐसी समाधि नहीं है तब तक उसका अनुभव नहीं है। नीचे प्रवचन पढ़ते हैं हा कोई भी अवर्णनीय परम समाधि वड़े उत्तम ज्यां सुधी अमे अनुभव नहीं करता मुनिराज एम कहे छे पुरुषार्थनु जोर उपाड़े छे के कोई एवी अवर्णनीय परम समाधि वर्णन मा न आवे एवी समाधि छे वर्णन जड़ छे। वर्णन को जड़ क्यों कहा मनुष्य वर्णन यानी क्या है वो वर्णन किस में करेंगे हम शब्दों में कर भाषा में करेंगे शब्दों में करेंगे और शब्द जड़ है पुद्गल है तो वर्णन जड़ छे समाधि चैतन्य छे शांत अने वितराग छे एवी अवर्णनीय परम समाधि वड़े उत्तम आत्माओना उत्तम आत्माना हृदय में स्फूर्ति स्फूर्ति ने प्रकट थनारी क्या है समतानी अनुयायिनी समतानी साथे रहनारी सहज आत्मसंपदा ने स्वाभाविक स्वभाव वाली स्वभाव से उत्पन्न जो है स्वाभाविक आत्मसंपदा मुनिराज कहे छे के ए अमारो विषय छे क्या है जो सहज आत्मसंपदा जो त्रिकाल निरावरण जो कारण परमात्मा कह रहे वो हमारा विषय है कि ये हमारा विषय तो कौन अभी है दो मिनट हाँ कि एवी अवर्णनीय परम समाधि वड़े उत्तम आत्माओना हृदय में स्फूर्ति समतानी अनुयायिनी सहज आत्मसंपदा ने ज्यां सुधी हमें अनुभवता नथी यानी ये विषय को ही अनुभवना है हमारे लिए ऐसे मुनिराज कहते हैं त्या सुधी अमारा जेवाओनो जे विषय छे मुनिराज कहे के मारो विषय तो अंदर त्रिकाड़ी ने विषय करवो ए विषय अमारो विषय छे जो त्रिकाली भगवान आत्मा है उसी को विषय बनाना है वही हमारे लिए विषय है ऐसा कहते हैं मुनिराज। पुण्य ने पाप ने व्यवहार ए अमारो विषय नथी यानी वो हमारा विषय कहने से अन्य हमारा विषय नहीं है समझाणु काई धर्मात्मा नो विषय एटले ध्येय वो ध्यान का ध्येय ज्ञान का विषय परमात्मा कारण परमात्मा राग विनानो निरावरण परमात्मा ते धर्मीनु ध्येय छे, उसी को विषय कहा। मुनिराज कहे जे कि अरे अमारो विषय तो आ छे, समतानी अनुयायीनी सहज आत्मसंपदा ने ज्या सुधी अमे अनुभवता नथी, छठे गुणस्थाने जरी विकल्प उठे छे ने एती कहे छे। आत्मामां आवीने आनो अनुभव ज्या सुधी नथी करता त्यां सुधी अमारा जेवानो जे विषय छे, त्यां सुधी अमारा जेवानो जे विषय छे। मुनिराज कहे छे कि मुनिनो विषय शुं? पंचमहाव्रत दया ने दान एनो विषय नथी। विषय एटले ध्येय, अंदर त्रिकाल निरावरण परमात्मा स्वरूप ए धर्मीनु ध्येय ने विषय छे। देखो ध्यान का जो विषय उसको ध्येय कहते हैं, धर्मीनु ए ध्येय अने ए विषय छे, ए विषय में जवानु छे, उसी में स्थिर होना है। विषय एटले ओला विषया विषय नहीं, पंच इंद्रियना विषय ए नहीं, पण विषय एटले ते ध्येय करवा लायक। अमने तो ध्येय करवा लायक तो आत्मा छे, अरे रे अमे एने पूर्ण अनुभव नथी करता छे। ये पढ़ लेते इतना, विषय छे तेने अमे अनुभवता नथी। सातमू आवे त्यारे अनुभव थाय ने, छठे गुणस्थाने विकल्प आवे छे एनो निषेध करे छे। अमारो विषय तो अंदर पूर्ण अनुभव करवो ए छे, और बीच में छठा गुणस्थान आता है इसलिए वो बारंबार उसका निषेध कर रहे हैं। पण एमां ठरी शकता नथी अने विकल्प आवे छे, पण अमारो विषय ए नथी। अमारो विषय तो अंदर ध्यान में जाऊं ए विषय छे। विशेष केवाशे, बाकी बातें कल। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अरविंद।